ओम शांति। आज बाबा ने सुबह की मुरली में दादियों की महिमा की है। एक तो कहा कि दादियां छत्र हैं, वो श्रृंगार भी हैं, तो उनकी छाया में सुख है बहुत। और दूसरा जो बाबा के लिए महिमा है कि पूरे सागर को स्याही बना दी जाए और सारे जंगल को अगर कलम भी बना दिया जाए तो भी बाबा की महिमा नहीं लिखी जा सकती। बाबा ने उन्हीं शब्दों को दादियों की महिमा के लिए कहा है और आज की ही मुरली में ये चीज सुनने को मिली है। तो ये सौभाग्य है कि आज हम दादियों की महिमा को सुनते हैं, उनकी कहानियों को सुनते हैं। मधुबन निवासियों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी मधुबन वाले किसी सेवा केंद्र पर जाते हैं, कहीं सेवा के लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार में उनके परिचय में ये बताया जाता है कि मधुबन निवासी जो हमारे बीच हैं वो दादियों के हाथों से पले बड़े हैं। तो हम सबका सौभाग्य रहा है कि हम दादियों की पालना में पले हैं, उनकी छत्र छाया में रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा ऐसी आत्माएं रही हैं जिन्होंने दादियों के अंग संग रह के बहुत कुछ लिया है, उनको नजदीक से देखा है। हम सिर्फ दादियों को स्टेज पे कभी देखते, किसी प्रोग्राम में देखते, योग में देखते हैं, मगर पूरा दिन दादियों के साथ बिताना, उनके अंग संग रह कर जो अनुभव लिया है, उनमें से कुछ चीजें हम आज शेयर करेंगे। हमारे बीच में रुक्मणी दीदी हैं। दीदी को तो सभी पहचानते हैं, पर दादी के साथ दीदी रही हैं। और हमारे साथ लीला दीदी हैं और लीला दीदी आज थोड़ा जल्दी जाएंगे, मगर जितना हो सके हम उनसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे। और फिर हंसा दीदी हैं और कविता दीदी हैं। तो पहला ही प्रश्न मैं ये पूछता हूँ कि सभी दादियों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो उनको स्पेशल बनाती हैं अपने हिसाब से। तो हमने जब देखा है तो हम सब ने दादियों से कुछ विशेषता ली है। तो दादियों के साथ आप सब इतना समय रहते हैं, तो आपने पर्सनली दादी जी के अंदर क्या ऐसी विशेषताएं देखी, क्या लेसन्स देखे जो आपने अपने लिए उठाई हैं कि ये विशेषता दादी जी की थी जो मैंने सीखी है उनसे। तो मैं लीला दीदी जी से शुरुआत करना चाहूंगा कि दीदी रतन मोहिनी दादी जी से उन्होंने जो विशेष चीजें सीखी है वो बताएं।
ओम शांति। हंसाबेन को और बाबा को, दोनों को थैंक्स जो बुलाया मेरे को। हमारा वो भाग्य है जो आज स्टेज पर है, लेकिन हमारा तो इतना कोई खास अनुभव नहीं है। हम तो इजी से चले, इजी से आए और इजी से सब कुछ चले। कोई ऐसी घटना नहीं घटी हमारे सामने जो हम कोई अनुभव सुनाए, लेकिन दादी के साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे बढ़ी मैं, जिससे आज मैं आपके सामने हूँ मैं। लेकिन दादी की विशेषता वो है, एक उसके आगे आप सब जानते हो और सब पहचानते हो, एक उसकी मुरली और इसका एक योग। मैं हमेशा बड़ों को भी यही बताती थी, मैं जब भी दादी के पास जाती थी, दादी जानकी के पास, कि आज वो क्यों इतना चल रही है, एक मुरली और एक ज्ञान, इन दोनों आधार से जब भी उनसे पूछेंगे, चाहे रात को पूछेंगे, चाहे दिन में पूछेंगे, चाहे नींद में पूछेंगे, तो भी वही सुनाएंगी ज्ञान। और नींद में भी वो पूरी मुरली सुना देगी अपने आप ही, वो इतना उसमें पक्का है दादी में। जो दिन में चाहे रात में 2 बजे उठेगी तो भी मुरली उठेगी, चाहे 3 बजे उठेगी तो भी मुरली उसके हाथ में होगी, चाहे नींद से उठ के बैठेगी तो भी उसके हाथ में मुरली होगी। तो ये सोच सकते हो उसके हाथ में और कुछ नहीं होगा। हमने उसके आगे बहुत कुछ कोशिश, दादी कुछ पढ़ेगी, दूसरा पढ़ेगी, लेकिन उसके आगे मुरली रहेगी, जो मुरली के आधार से आज उसका जीवन, नहीं तो जिस परिस्थिति में हम अभी 6 मास गुजरे, डॉक्टर ने जवाब दिया था, लेकिन आज क्यों जिंदा है दादी भी हमारी, आज मुरली और ज्ञान से आज इतना बल है उसमें, जो आज जीवन में आगे बढ़ सकती है। हम सब मोबाइल उठाएंगे या कुछ देखेंगे या कुछ पर चिंतन में चले जाएंगे या कुछ उसमें जाएंगे, लेकिन दादी इतनी उपराम और इतनी अवस्था उसकी है, कुछ भी बोलेंगे दूसरे सेकंड एकदम सब कुछ भूल जाएगी है। हमने उसके बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे, जिससे हम इतनी जीवन में बढ़ सकी, मैं हम भी उससे बहुत कुछ सीखना, मुझे भी बहुत कुछ मिला कि जीवन में हमको कभी भी, हमने किसी भी प्रकार में कभी किसको गुस्सा किया हो, कुछ ना बोला हो, या आने वाले कोई भी घर वाले आते हैं या बाहर वाले भी टीचर्स आती है, लेकिन मैं अपने आप को सोचती हूँ कोई भी इंसान सबको संतुष्ट होके जाए और संतुष्ट होके निकले, मेरे से कोई नाराज रहे या मेरे से कोई नाराज होके जाए, मैं वो कभी पसंद नहीं करती हूँ और ना पसंद करती हूँ मैं, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को, मैं भी खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ मेरे साथ में रहने वाले भी खुश रहे और इसमें लाइफ में आगे बढ़ते रहे अपने ज्ञान और योग में। मैंने वही हमेशा सीखी मैं, और मैं आगे और भी सीखती रहती हूँ हमेशा। मैं अपने आप को ये नहीं समझती कि मैं बड़ी हूँ या बड़ी होकर के चलती हूँ, मैं हमेशा इनों को भी बोलती मैं भी एक सेवाधारी हूँ, मैं भी एक सेवा करती हूँ। मैं अपने आप को कभी नशा नहीं दिखाती हूँ या कभी जीवन में जिसमें मुझे कुछ गिरना पड़े या मुझे कुछ ना, लेकिन हमेशा अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ में हमेशा मैं ध्यान देती हूँ, ताकि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना बने जिससे मेरा विकर्म बने या मुझे कुछ भोगना पड़े। इसलिए और कुछ प्रश्न।
आप कितने साल की थी जब आप?
मैं जब आई यहाँ मधुबन में तो कुछ भी मालूम नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता, और उस समय मैं समझती हूँ मधुबन में 100 लोग भी नहीं थे, मधुबन में सिर्फ ज्ञान विज्ञान भवन था और मधुबन था, बस कुछ नहीं था तभी जब मैं आई तो। और यज्ञ में सब लोग थे, जिस समय उम्र मेरी 11-12 साल की उम्र थी मेरी जब मैं मधुबन में आई, जब दादी की मदर भी थी और दादी भी थी, उसकी मदर के वजह से मुझे दीदी ने रखा था, बड़ी दीदी ने, भाई तुम यहाँ रहो और सेवा करो, तो मैंने बोला, सबने मुझे कहानियां सुनाई, लेकिन मैंने ये अपनी लाइफ में, क्योंकि दादी की मदर थोड़ी स्ट्रांग थी बहुत, उसके आगे किसी का चलता नहीं था, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दादी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके आगे किसी का नहीं चलता था, तो उसके स्ट्रांग के वजह से मैं भी एक स्ट्रांग बनी, दादी के मदर के वजह से भी, लेकिन मेरे को उसकी सेवा में रहने का मौका मिला। मैं जब घर से ही आई थी, मैं भी नई नई थी, कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन दादी के मदर ने भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ उसने मुझे आगे बढ़ाया, और दादी तो हमारी लिखना पढ़ना और ऑफिस में ज्यादा करके ही रही व्यक्ति, क्योंकि टीचरों का उसका कनेक्शन रहता था, तो ये इतना कनेक्शन मधुबन में इतना नहीं, इंटरव्यू नहीं करती थी कभी भी, क्योंकि ज्यादा करके टीचरों के में ही रहती थी ये, तो इसलिए इस उम्र में मैं मधुबन में आई, लेकिन वो भी मैंने सब लोगों से पार किया। मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं अकेली हूँ या कुछ, अकेली थी मैं छोटी मधुबन में, और कोई नहीं था, ऐसे थी बहने, लेकिन सब बड़ी थी उम्र में सब लोग, लेकिन छोटी में मैं ही थी, लेकिन हमेशा हिम्मत रही और हिम्मत से आगे बढ़ती रही मैं, अपनी सेवा और अपने में मस्त रहती थी मैं, और आज भी मैं अपनी सेवा में और अपने मस्त में रहती हूँ मैं।
थैंक यू दीदी। अब मैं रुक्मणी दीदी जी से सुनना चाहूंगा कि आप परदादी के साथ रहे, लंबा समय दादी के साथ रहने का अनुभव रहा है, क्या चीजें आपने दादी जी से अपने लिए सीखी ये बताएं।
ओम शांति। परदादी के साथ तो 1964 से रहे और हम तो यही कहेंगे कि जीवन में दादियों के साथ है, परदादी के साथ भी कहीं पांव की चोटी से लेकर सिर के बाल तक इतना दादियों से सीखा है, क्योंकि परदादी हर कर्म में और हर बात में बहुत ही प्रैक्टिकल सिखाती थी। अब थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार मैंने कहा कि पांव से लेकर सिर की चोटी तक, तो परदादी जो चलती थी तो कभी भी उनकी पांव की आवाज नहीं सुनी। दीदी हमेशा हम लोगों को सुनाया करती थी कि जब बाबा साकार में चलते थे तो एकदम लाइट फरिश्ते के रूप में। तो मैंने परदादी को ऐसे देखा, कलकत्ते में साथ रही, तो जब वो चलती थी अपने कमरे से क्रॉस होके, बहनों के कमरे से किचन से क्रॉस होके जाती थी ऑफिस की तरफ, तो मैंने कई बार हजार बार अनुभव किया होगा कि जब जाती थी तो कभी भी उनकी हमने चप्पल की आवाज भी नहीं सुनी। जब क्रॉस करती थी तो उनके वाइब्रेशन आते थे कि दीदी अभी कमरे से निकलकर ऑफिस में जा रही है। तो एक तो उनकी जो चाल थी वो एकदम जैसे कि फरिश्ते जैसी, ये तो 40 साल 50 साल पहले की बात सुनाती हूँ। बाकी तो मुख कर्म के द्वारा तो बहुत कुछ देखा और सुना, पर मैं सिर के बाल के ऊपर आती हूँ, बातें तो बहुत है। मेरे को याद है कि ऐसे हमको बचपन से कभी भी लौकिक में भी ऐसे संस्कार नहीं थे, लौकिक परिवार में उस समय घर में भी रहते थे तो हर एक की कंगी, हर एक का ट्वाल, हर एक का बर्तन, दो भाई थे एक बीच की मैं थी, पर सबके अपने पर्सनल होते थे, कभी किसकी चीज यूज नहीं करते, तो वो संस्कार बने हुए थे। पर मेरे को याद है कि एक बार की बात है कलकत्ते की, तो एक बहन ने किसी बहन की कंगी उठा करके सिर में लगाई। अब उस ठिकाने पर नहीं मिली तो परदादी को मालूम पड़ा। परदादी ने उस समय बहुत अच्छी बात सुनाई कि यदि आप बगैर पूछे यदि किसी की कंगी भी आपने लिया तो एक तो सबसे बड़ी चोरी हो गई, और दूसरी जिसकी कंगी उठाई उस कंगी के अंदर जो उसके वाइब्रेशन, जो मन के विचार, जब उसने सिर में कंगी डाली वो विचार, वो वाइब्रेशन, वो भी आपके अंदर आ गए। तो हम उस समय देखती थी कि इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म बात है, उन बातों की दादी इतनी सूक्ष्म गहराई हमें देती थी। तो इसलिए मैंने तो अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें जो उन्होंने सिखाई है, जो उनके अंग संग रहकर सीखा है, वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारणा करके चलती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं कविता दीदी से पूछना चाहूंगा। कविता दीदी रत्नमयी, क्षमा करें, ईशु दादी के साथ अभी रहते हैं, मगर पहले मनोहर दादी के साथ भी रहने का मौका मिला है, बड़ी दादी के साथ भी रहने का मौका मिला है। तो कोई एक बात जो आप शेयर करना चाहते हैं जो उनके जीवन से आपने उठाई अपने लिए?
ओम शांति। आज का दिन जब मुझे दीदी का फोन आया, हंसा दीदी का, कि आपको आना है, तो हमने कहा दीदी दादी जी को भी लेके आना है, कहा आपको आना है, तो मैंने दीदी को बहुत दिल से थैंक्स कहा और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कहा कि बाबा आज तक मैं मधुबन में 20 साल से तीनों दादियों की सेवा का चांस बहुत सुंदर मिला, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया जो आप सबके साथ हम मिलकर अपने अनुभव शेयर करें। तो जब दीदी का फोन आया कि आपको आना है, मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर से बहुत दुआएं निकली कि हम अपने परिवार में, अपने ब्राह्मण सभी से तो मिलते जरूर है, लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार में और अपने परिवार से मिलने की खुशी एक अपनी होती है। और मेरा सबसे प्रथम बड़ा सौभाग्य यह रहा कि मैं बचपन से ही बाबा के ज्ञान में रही। मेरी आयु जब 7 साल की थी, जब मेरे चाचा जी ने मेरे पापा से मुझे एडॉप्ट किया, क्योंकि मेरे चाचा को बच्चे नहीं थे, एक बेटा था, लेकिन उनको लगता था कि अगर मुझे बच्चे होती तो मैं शायद उसको ब्रह्मा कुमारी जरूर बनाता था। तो मुझे उन्होंने एडॉप्ट किया और उसके बाद में उन्होंने बाबा की बातें बचपन से ही सिखाना शुरू किया। जैसे हमारे घर पर ही क्लास लगती बहुत बड़ी, 80 से 90 लोग रेगुलर क्लास में आते थे। दिनचर्या ही वही थी, 3:30 बजे सुबह से उठना है, और पूरी क्लासेस, मुरली क्लासेस मैंने बचपन से ही सुनी, और सात्विक भोजन का हर तो बचपन से ही, बाहर की दुनिया का कभी कुछ खाया नहीं, न कभी बाहर की दुनिया का अनुभव लिया। सेकंड बात यह रहा कि जब मधुबन सर्वप्रथम आई तब मैं 8.5 साल की थी, बच्चा पार्टी में मैं मधुबन आई। तो मधुबन में उस समय बाबा पांडव भवन, ओम शांति भवन में आए थे, 82 कुछ ईयर्स याद नहीं ठीक से। तो जब बाबा उस समय फैमिली से मिलते थे, एक एक परिवार से मिलते थे, नज़दीक से मिलते थे, तो जैसे जब मौका आया कि चाचा और चाची मुझे बाबा के पास स्टेज पर लेके गए और अपने गोदी में बिठा के रखा और फिर बाबा के पास जाके खड़ा कर दिया और कहा, बाबा आप उनके सर पर हाथ रख दीजिए, ये हमारी एक ही इच्छा है कि ब्रह्मा कुमारी बने। तो बाबा ने बहुत प्यार से मेरे तरफ दृष्टि दे करके मुझे अपने पास बुला लिया और सर पर हाथ रखे गोदी में लेकर के कहा, ये तो यज्ञ की आत्मा है ही ब्रह्मा कुमारी। उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं था, समझ नहीं था बाबा क्या कहते हैं और क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं था, क्योंकि जब भी ब्रह्मा बाबा की फोटो में देखती थी तो मैं चाचा जी को पूछती थी कि ये कौन है, तो कहा तुम्हारे दादाजी है। शुरू से मुझे यही बात पक्का कराया, और जो मैं हर एक बच्चों को, जो बच्चे खेलने के लिए आते थे मेरे साथ में, तो मैं कहती थी ये कौन है, पूछते थे मेरे को, तो मैंने कहा ये हमारे दादाजी है। तो ये ब्रह्मा बाबा का परिचय मुझे दादाजी के रूप में ही मिला, उन्होंने पूरा साप्ताहिक पाठ्यक्रम भी, कोर्स भी कराया। उसके बाद में मैं 10 साल सेंटर पर रही, सेंटर के हर प्रकार की सेवा का अनुभव लिया, कोर्स भी करने का, मुरली सुनाने का, पार्टी लेके जाने का। उसके बाद में मधुबन में जब आई तो पार्टी लेकर के आई थी, ज्ञान सरोवर में एजुकेशन विंग पार्टी का। तो उसके बाद में मुझे मनोहर दादी जी को सेवा देने के लिए ज्ञान सरोवर में जाना पड़ा, दादी कॉटेज में। तो जैसे मैंने कॉटेज में पांव रखा तो भाग्य दीदी ने कहा, सेवाधारी आ रही है। तो मैंने कहा, दीदी मैं सेवा देने के लिए आ रही हूँ, जो नागपुर की दीदी जी ने हमें दिया है पार्टी की सेवा, यज्ञ की। तो कहा, तुम सेवाधारी बन कब रहेगी? मैंने कहा, बाबा जहाँ रखे जैसे रखे। तो जैसे मनोहर दादी जी से सर्वप्रथम मिली, तो जैसे दादी ने मुझे देखा, दृष्टि मिली, वैसे दादी ने देख करके अपने बाहों में ले लिया, कहा तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही। मैं सोचने लगी मेरा तो कोई ऐसा दादी के पास सेवा का आने का मौका नहीं था, लेकिन दादी जी ने कैसे एकदम गोदी में लेके कहा कि मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तो कहा, अभी तुम यहीं रहना मेरे पास सेवा में। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे सेवा में रह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वजू पिछले की पार्टी लेकर के आई हूँ, नौ टीचर से मेरे साथ में, उनको तो मधुबन दिखाना है, पार्टी घुमाना है। तो कहा, आप ऐसा करो, ये मुझे बहुत, दादी जी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, दादी जी ने अपने हाथों से मुझे एक गिट्टी खिलाई, तो बहुत अनुभव अच्छा हुआ, इतना लगा कि जैसे भगवान ने मेरे मुख में टोली खिलाई। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, दादी ने बहुत प्यार किया, क्या तुमको क्या सेवा आती है? मैंने कहा, मुझे कुछ सेवा नहीं आती, मैं मुरली सुनाती हूँ सेंटर पर और कोर्स भी करती हूँ, सीधी राधी करती हूँ, और बाहर की जो VIP सेवा होती है उसको ज्यादा देखती हूँ, और किचन का काम कुछ आता है? मैंने कहा, नहीं, मैं चाय पीती हूँ तो चाय बनाना आती है, बाकी और कुछ नहीं आता। तो कहा, चाय पीना सीखती हो? मैंने कहा, हाँ थोड़ी चाय कभी पी लेती हूँ बस। तो कहा, तुम्हें भाग बहन सब सिखाएगी तो तुम रहना। मैंने तो ना ही ना कहा, क्योंकि मैं कुछ और प्रोग्राम से नहीं आई थी, तो उस समय पर कहा कि नहीं आपको रहना है, फिर दीदी से ही बात करके उन्होंने परमिशन लिया कि हम इसे थोड़े दिन के लिए, क्योंकि शीला दीदी थी दादी जी की सेवा में, तो वो उनकी मम्मी बहुत बीमार थी तो वो घर जा रहे थे एक मास के लिए, तो दादी जी के पास कोई सेवा के लिए नहीं थे, इसीलिए मुझे उन्होंने ऑफर किया और वही मेरा लकी ड्रा खुल गया दादियों के सेवा का। उन्होंने बहुत, मुझे कुछ नहीं आता था, हर काम मुझे भाग दीदी ने सिखाया और मनोहर दादी ने बहुत बहुत पालना और हर समय अपने साथ ही रखा, चाहे पंजाब गए चाहे दिल्ली गए चाहे कहाँ भी गए, अपने साथ सुन रखा। और दादी से मैंने एक बात बहुत विशेष सीखा कि हर कोई आते थे, दादी उनको बहुत प्यार से शिक्षा देती थी, मिठरी मिठरी करके बच्चों को, और इतनी सारी कन्याओं को पालना दी। हमारे घर से भी जब 32 कन्याएं निकली तो मनोहर दादी जी की सेवा के अंदर ही आज भी हैं, आज भी थी और सेवा कर रही थी। तो दादी से बहुत अपनापन, बहुत पालना और प्यार क्या होता है वो मैंने दादी से सीखा, मनोहर दादी जी से खास करके।
सुनाएंगे दादी, सुनाएंगे, वापस आएंगे। मैं लीला दीदी से अगला प्रश्न पूछता हूँ। हंसा दीदी आज सुबह सुना रहे थे हमें दादी जी के साथ के, उनके साथ के अनुभव। लीला दीदी, आपने दादी के मुरली के अटेंशन के बारे में बताया, आप सपने में अगर आप बीच में उठा के नींद से भी पूछ लोगे तो दादी मुरली सुनाती थी, तो आज भी हम दादी को मुरली सुनाते हुए देखते हैं। हम जब दादी को स्टेज पे देखते हैं तो उनके स्वरूप को देखते हैं, उनके खुद के पुरुषार्थ के लिए उनका अटेंशन जो ज्ञान योग पे है, तो ऐसे वो पहले से उन्होंने बनाया होगा, एक दिन में तो बने नहीं होंगे। ऐसी कोई घटना जो आपने देखी हो, कोई याद आती हो, ऐसी बात सुनाए।
हमने तो ये सब नहीं देखा, लेकिन खुद अनुभव अगर सुनाती है दादी, समझ लो बाबा साकार के होते थी दादी हमारी, तो ये और बातों में नहीं जाती थी कभी भी ये, और आज भी हम देखते इन कोई फालतू बातों में ये नहीं जाती है कभी भी, कभी भी नहीं गई हमारे, हम तो अभी तक देखा तो कभी नहीं गई है कोई भी बातों में। यहाँ कोई ऐसा कारोबार होता है, यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ ऐसा कुछ बोलना होता है, टीचर्स का कोई समस्या रहती है तो दादी के पास जाती थी, बड़ी दादी के पास, दादी नहीं है तो कभी दादी जानकी के पास जाती थी और कुछ सुनाती थी पहले, लेकिन वो भी अभी बीच में छूट गया था वो उसकी तबीयत की वजह से। लेकिन उसने हमेशा, दादी ने इन बातों से न्यारी और प्यारी रही और पुरुषार्थ अपना हमेशा अलग से ये करती रही हमेशा, कभी भी। आपने क्या प्रश्न पूछा?
ये जैसे अपने पुरुषार्थ के बारे में दादी ने पहले अटेंशन दिया हो जो आपने देखा,
माना उसने अपने आप को अकेला रही और अकेला रह करके पुरुषार्थ किया, जैसे मुरली लिखना, तो एक बार ये दादी लिख रही थी एकांत में, तो किसने जाकर के बोला कि बाबा ये बच्ची बैठ के लिख रही है, क्या लिख रही है मालूम नहीं है, तो बाबा आए, बच्ची तुम क्या लिख रही हो, तो बाबा ने बोला जो बाबा आपने मुरली सुबह सुनाई है उसका विचार सागर मंथन करके मैं उसका प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ। तो बाबा को दिखाया तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। आज तक दादी जब भी मुरली, सिंधी मुरली लक्ष्मी दादी हमारी आती थी, पहले दादी को दिखाती थी कुछ करेक्शन करना है या कुछ करना है, तो रात को दादी करेक्शन करती थी मुरली के बारे में, जब भी हम पांडव भवन में रहते थे तभी। लेकिन हमेशा दादी कभी भी एकांत में इसी बातों में मुरली में हमेशा रही, साकार के होते भी वो ही रही और आज भी वो ही रहती है।
थैंक यू दीदी। अंसा दीदी से मैं यही पूछना चाहूंगा, ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज हैं जो दादी जानकी के बारे में हमने सुना है। अमृत वेला में दादी को हम स्टेज पे देखते थे और कभी कभार लोग ये भी कहते थे कि दादी इस उम्र में भी अमृत वेला पे आ जाती है और हम यंग लोग हैं, हम जवान हैं, फिर भी हम लोग मिस कर लेते हैं। तो ऐसे कोई अनुभव जो आपने देखा हो कि दादी धारणा और मुरली और अमृत वेला योग के प्रति उनकी रही हो, कोई ऐसी घटना सुनाए।
दादी अपने नियमों में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी और हमको भी इसी रीति से ही पाला और बड़ा किया। और जब यहाँ 2007 में रहने लगे तो कईयों को मालूम है दादी रोज मीटिंग हॉल में आना, कॉन्फ्रेंस हॉल में आना योग कराने के लिए। हम उनको निश्चिंत करते थे, क्योंकि वो घड़ी रखती थी, दिखाई नहीं देती थी, लाइट वाली थी ऐसी, तो हम उसको निश्चिंत करते थे, दादी मैं उठाऊंगी आपको। तो हम तो सारे दिन उठ जाते थे, लेकिन उनके पास, क्योंकि हमको तो पहले तैयार होना है दादी के पहले, फिर 4:15 बजे उनके पास जाके खड़े रहते हैं, और ऐसे ही जैसे थोड़ा हाथ लगाती थी तो दादी उठ जाती थी। तो एक बारी क्या हुआ कि शायद एक ही बारी ऐसे हुआ होगा, मेरी आँख थोड़ी लग गई, तो उसने सोचा होगा बालकी को उठाऊ नहीं, तो खुद अपने आप को उठ के तैयार होके, तब तो एक्टिव ही थी, तो अपने आप उठ के फ्रंट दरवाजा के, क्योंकि रात को हम कुंडा लगाते हैं, वो स्टॉपर लगाते हैं ऊपर, और दादी तो काफ़ी छोटे कद की थी, तो एक बारी मेरे ऐसे ही मैं नींद आ गई, तो वो धीरे से अपने आप को तैयार करके वो फ्रंट दरवाज़ा में वो कुंडा खोला, स्टॉपर खोला, वो ऊपर काफ़ी ऊंचा था कि मालूम नहीं कैसे उसने ऐसे स्टॉपर नीचे किया, और दरवाज़ा खोल के वो अमृत वेले करने चले गए। मेरे आँख फिर 4 बजे आसपास खुली, मैं एकदम घबरा गई, हैरान हो गई, मैं बाथरूम में देखूँ तो दादी है नहीं, भंडारे में गई दादी है नहीं, दादी कहाँ गई, और फिर मैं तुरंत हॉलवे में देखा तो दरवाज़ा खुला है, मैंने देखो अपना जो नियम है वो छोड़ा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी बीमार भी होती थी तो कहती थी कि मेरे को उठा के बिठाओ, और सोफा तो बेडरूम में भी है, तो हम बोलते थे कि दादी यहाँ ही बैठो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ वो नींद का वाइब्रेशन है, वो खटिया मेरा नींद खटिया मेरे को खींचेगा, मेरे को सिटिंग रूम में लेके जाओ। तो हम दादी को खास वहाँ से बेडरूम से सिटिंग रूम में लेके जाते थे, क्योंकि बेडरूम में तो ऑब्वियसली मन होता है चलो 5 मिनट बैठे तो सो जाते हैं, लेकिन दादी कभी ऐसे नहीं करती थी, बीमार होते हुए भी। तो बातें तो अनेक है, फिर सुनाएंगे।
लीला दीदी, अगला प्रश्न है कि दादी के साथ सेवाओं में भी जाने का मौका मिला, दादी पूरे भारत में, विदेश में भी अनेकों जगह गई हैं, अनेकों सेवाओं के लिए जाना पड़ता है, इतने बड़े उम्र में भी दादियों को जब आप ले जाते हैं, आप देखते हैं कि उनके कंफर्ट्स, उनका ख्याल रखें, तो जब आप इतना उनका ध्यान देते हैं तो उनका सारा अटेंशन सेवा पे होता है, तो आप क्या देखते हैं कि सेवा में वाचा की भी सेवा होती है, कभी VIPs आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, बड़े लोग मिनिस्टर्स आदि से भी मिलना होता है, तो उनके लोगों से मिलने और उनके सेवा में आप क्या अंतर देखते थे, कि सेवा वैसे ही करते थे, हर किसी से वैसे ही मिलते हैं, कैसे आपने देखा है इन चीजों को होते हुए?
मैं वैसे हमेशा हर साल में विदेश जाती थी, मैं दादी को लेकर के कोई भी निमंत्रण देता था मैं कभी ना नहीं बोलती, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, लेकिन सीजन के बाद हमेशा मैं एक बार जरूर मैं विदेश जाती थी मैं, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद मेरा सब कुछ छूट गया, मेरा बाहर जाना आना मैं कम कर दिया, लास्ट में अभी भी मेरे को जर्मनी जाने का था तो मैंने बोला अर्जेंट मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं है, वहाँ कहाँ सोना किधर सोना, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा अभी सोना उठना। तो हमेशा सेवा में जाने से मैं कभी भी किसी भी प्रकार में कोई भी, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, मैं इजी से दादी को लेकर के, मैं और दादी थी और कोई नहीं था मेरे साथ पहले, तो अभी थोड़ा मैंने बढ़ाया, नहीं तो हमेशा मैं अकेली जीवन में चली, चाहे कैसी भी सेवा हो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इन सेवाओं में कभी ना नहीं बोला। और दादी भी हमारी चाहे कैसा भी तबीयत हो कुछ भी हो, तो भी दादी हमेशा सेवा में हाजिर रहती थी, और चाहे कोई भी आने वाली परिस्थिति भी मैं इसमें पार हो जाती थी। मैं उतना बाबा मेरे को हमेशा मदद दिया, और आज तक भी बाबा मदद देता है और दादी भी देती है। और अपने उसमें बहुत रहती थी, चाहे कुछ भी तबीयत नहीं हो तो भी हमेशा प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम में रहना है, एक्यूरेट चलना है, एक्यूरेट आना है। कभी अपने आप में मिस नहीं किया उसने, और कभी ये नहीं बोला कि मुझे वो तकलीफ है, ये तकलीफ है, मैं लीला नहीं चल सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हमेशा अपनी सेवा में, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे नींद मिले ना मिले, तो भी अपनी सेवा में हमेशा हाजिर रही, और हमेशा आज भी हाजिर रहती है वो।
थैंक यू दीदी। रुक्मणी दीदी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम में से मधुबन के वरिष्ठ भाई लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने निर्मल शांत दादी को बहुत समय से देखा है, बट ऐसे यंग भी भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने पर दादी को थोड़ा समय देखा है, और दादी की शारीरिक आयु भी बहुत बड़ी रही है, बड़ी दादी रही है हमारे लिए, तो जिन्होंने पालना ली है उनको भी थोड़ा ही समय मिला है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को 10 साल मिले होंगे, कुछ लोगों ने 7-8 साल लिया होगा। तो उन्होंने दादी के पहले के जीवन को नहीं देखा है, जब दादी सेवा में भाग दौड़ करती, दादी अपने जीवन के पुरुषार्थ के बारे में दादी का कैसा अटेंशन रहा, सेवा के प्रति क्या अटेंशन रहा, ऐसी कोई घटना सुनाए।
ओम शांति। पर दादी को तो सेवा का बहुत उमंग रहता था। मैं तो थोड़ी पुरानी बातें सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे को याद है परदादी जब 1964 में आई थी कलकत्ते में, हम तो थे ही पहले से 1958 से, तो एकदम जैसे कि शुरुआत थी। और 1964 में मम्मा भी कलकत्ते में बाबा ने भेजा था, और एकदम सेवा की शुरुआत थी, थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू हुई थी, क्योंकि 1958 में रतन मोहन दादी उर्मिला बहन गांधी धाम कच्छ में जो रहती हैं, भारती बहन राजकोट की रहीं, पर इतनी सेवा शुरू नहीं हुई थी। तो 1964 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, और उस समय साकार बाबा ने बहुत भाई बहनों को, माना दादियों को, उस समय भेजा, अपने जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, सभी दादियां गईं। उस समय भी हमारी आयु 8-10 साल की होगी। तो मेरे को याद है कि जब इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगा ली, आप सभी तो प्रदर्शनी करके, सेवा करके महीना 20 दिन रह के चले गए, पर साकार बाबा ने परदादी को कलकत्ते में रख दिया। उसके पहले परदादी 1960 से लेके 64 तक बॉम्बे में रही, फिर बाबा ने जब कलकत्ते में भेजा, सेवा की शुरुआत हुई। तो उस समय कुछ भी नहीं था, मेरे को याद है। तो जो सेवा के बाद एक सेंटर लिया था, वो भी अविक्त बाबा ने एक बहन के द्वारा ट्रांस में मकान दिखाया था, और वो स्थान लिया, वो सेंटर अभी भी है। उसका किराया भाड़ा 600 रुपया था, और सलामी थी 5000 रुपया, और भाई बहनें तो मुश्किल से 15-20 थे। 600 रुपया किराया भाड़ा देना भी बड़ा मुश्किल की बात थी। पर उस समय जब परदादी कलकत्ते में गई, और उसके बाद 1965 में फिर एक प्रदर्शनी बड़े रूप से की, उस समय उस प्रदर्शनी से निकले अपने जयपुर वाले जगदीश भाई, शर्मा भाई, और एक भाई और राधे श्याम भाई करके हैं, वो भी अभी है। इस प्रकार ये 3-4 भाई निकले, और उसके बाद सेवा का जैसे विस्तार हुआ। तो हम जब छोटे थे और देखते थे कि परदादी को कि है कुछ भी नहीं, पर फिर भी ऐसे स्थिति में भी परदादी का मनोबल
बड़ा स्ट्रोंग था, मन की वृत्ति बड़ी पावरफुल।
इसे पूछो जगदीश भाई को किसने देखा, जो जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में, जयपुर के जगदीश भाई,
जयपुर के,
जयपुर के जगदीश भाई,
नहीं रामलखन भाई, विनोद भाई, और किसने, शर्मा जी को तो देखा होगा,
शर्मा जी को तो देखा होगा, वो तो देखते रहते। जगदीश भाई को किसने देखा, जयपुर के जगदीश भाई, जो रुक्मणी बहन ने अभी नाम लिया,
पांच पांच लोग,
प्रकाश भाई। तो ऐसे करके जब वो सेंटर लिया, तो सेंटर लेने के बाद जैसे कि सेवा शुरू हो गई, पर मैंने देखा उस समय परदादी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल रहती थी, और उस समय उनको मैं देखती थी कि है कुछ भी नहीं, पर फिर भी जैसे कि बहुत शक्तिशाली बन के, बहुत अलर्ट होके, और जैसे कोई राजा महाराजा चलता है, इस प्रकार परदादी चलती थी। तो सेवा का विस्तार तो बहुत तेजी से, उसके बाद 1968-69 में जैसे ही बाबा वियुक्त हुए और बाबा ने बड़े से बड़ा स्थान दिया अपना कलकत्ता म्यूजियम, तो वहाँ भी सेवाएं शुरू हुई। तो ये हमने देखा प्रैक्टिकल परदादी के जीवन में कि इन दादियों का जो मनोबल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रांग रहा, कभी भी कोई बात से मन से हारते नहीं थे, और उसी प्रकार भाई बहनों को भी उतना ही उमंग उत्साह देते थे। मेरे को तो याद है कि उस सेंटर पर उस समय मुश्किल से 15-20 माताएं आती थी और 4-5 गिनती के भाई आते थे, पर देखते देखते इतनी क्लास भर गई, कम से कम 100 के करीब माताएं जमा हो गईं, और इतना सेंटर फलीभूत हो गया। तो ये हम देखते थे कि दादी की पालना, परदादी की, जो एक एक को इस प्रकार चलाती थी और उनकी दिल लेना, उनको उसी प्रकार से चलाना, और सबसे बड़ी बात कि दादियों की विशेषता तो यही रही है, सभी के अंदर यही देखा दादियों में, कि एक एक को एक दृष्टि के द्वारा एक मीठी टोली खिलाकर सभी को इतना शक्तिशाली बना देती हैं, और अपना बना के बाबा भी अपना काम करवाता है और दादियां भी अपनी सेवा करवा लेती हैं। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। अब मैं कविता दीदी से पूछूंगा, यीशु दादी को हम सब लोग देखते हैं, यीशु दादी का स्वरूप हमेशा गंभीरता का रहा है, दादी आती है तो सब खुश हो जाते हैं, सभा बड़ी हो छोटी हो। यीशु दादी के पर्सनल पुरुषार्थ के बारे में, उनके अपना जो धारणा है, उन चीजों के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि हमें वो देखने का मौका नहीं मिलता, तो इसके बारे में कविता दीदी बोले।
ओम शांति। बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यीशु दादी जी की सेवा मिली। दादी हमारी बहुत 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 प्यारी है और बहुत निर्माण है, बहुत ही शांत चित्त है। सर्वप्रथम जब मैं कॉटेज में आई तो मुझे बड़ी दादी जी ने कहा जाके यीशु दादी को ये लिफाफा दे के आओ। तो जैसे मैंने दादी को देखा तो दादी बेड पर लेटी हुई थी, ऐसे लगा जैसे विष्णु जी लेटे हुए विशेष से सैया पर लेटे होते हैं, उनको देखते हुए वही भासना, वही संकल्प और वही भाव विष्णु जी लेते हैं। साक्षी दृष्टा होकर के सारे कारोबार को देखते हुए निश्चिंत रहते हैं। जैसे जैसे दादी जी की सेवा में मैं आई, वैसे तो कॉटेज में रहते तो हम साथ में ही सब रहते थे, लेकिन पूर्णतया सेवा उनकी मुझे 2007 से मिली। दादी जी के जाने के बाद में उनकी सेवा का चांस मिला मुझे। तो दादी जी को मैंने देखा, जैसे उनके सेवा में मुझे चांस मिला तो दीदी ने कहा, मुन्नी दीदी ने, कि अभी आपको यीशु दादी की सेवा के लिए ऑफर है तो आप वो कीजिए। तो मैं कुछ भी सेवा करने के लिए दादी को कहती थी, दादी जी आपके पास क्या सेवा है, मैं क्या करूं? कहती थी, अच्छा तुम क्या सेवा करना चाहती हो? मैंने कहा, दादी आप तो मुझे देख रहे हो इतने सालों से दादी की सेवा में, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो कहा, मैं तो अपने सब काम कर लेती हूँ, तुम क्या करोगी? मैं भी सोचने लगी बात तो सच है, दादी बहुत एक्टिव थी और सब कुछ कर लेती थी, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा दादी जी आप सो के उठे ना, मैं आपका बिस्तर लपेट देती हूँ, ठीक है ना। तो मैं जैसे बिस्तर लपेटने गई उनका फलाने की चादर को घड़ी करने, बोले नहीं नहीं ये तुम रखो छोड़ो। मैं डर गई, इतनी दादी की बड़ी बड़ी आंखें हैं ये सब देख के गंभीर, मुझे बहुत डर लगा। मैं मुन्नी दीदी के पास गई, मैंने कहा दादी के पास कोई सेवा नहीं है दीदी, मैं आपकी तो सेवा करती हूँ ना, जो है वही करूंगी। नहीं नहीं ईशु दादी कराती है सेवा। तो मैं घड़ी करने, तो कहा लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, मैं दिखाती हूँ तुमको कि एक्सरसाइज कैसे होती है। चादर को ऐसे लंबा कर करके फिर झाड़ा, फिर उसको घड़ी किया, फिर लपेट के देखा एक्सरसाइज ऐसी होती है। मैंने कहा मैंने एक्सरसाइज तो बहुत सीखा था, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने पहली बार देखा कि कर्म के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना। उसके बाद शाम हुई, रात हुई, तो मैंने कहा दादी जी मैं आपकी मालिश करूं, दादी की भी करती थी तो मैं आपकी करूंगी, क्यों मैं बूढ़ी हूं क्या जो मालिश करूंगी। मैंने कहा नहीं दादी आप शाम को बहुत पैदल करके आए हो तो थके होंगे, तो मैं मालिश कर देती हूँ, मैं सीखी हूँ थोड़ी मालिश करना, जानती हूँ थोड़ा। बोले तुम्हारे साथ ना मेरा हिसाब किताब बन जाएगा, इसलिए मैं मालिश नहीं कराऊंगी कभी नहीं, क्यों कि बाबा कहते हैं कि अपने विकर्मों को चुक तू करो, और तुम्हारे साथ तो मेरा विकर्म बनेगा, हिसाब किताब बनेगा, तो मैं कैसे बाबा को फिर हिसाब दूंगी, तो मैं तो मालिश नहीं कराऊंगी। फिर मैं दीदी के पास में गई, तो बोले नहीं नहीं होगा तुम शांत रहो, थोड़ा दादी ऐसे स्ट्रांग है, थोड़ा सा डरना नहीं, कोई बात नहीं धीरे धीरे आ जाएगी सेवा, ऐसे करते। तो हर कार्य में दादी इतना एक्टिव थे, ऑफिस भी जाएगी तो अकेली, पैदल जाएगी तो अकेली। मैं बड़ी संकोच में थी, मैंने दीदी को कहा मुझे सेंटर भेज दीजिए, यहाँ कोई सेवा नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं है, दादी इतनी एक्टिव है कोई सेवा कराना ही नहीं चाहती। फिर मोहिनी दीदी ने कहा कविता कहती है मैं सेंटर जाना चाहती हूँ भेजू, बोले नहीं नहीं मैंने कभी कहा सेंटर, मैं बुजुर्ग हूँ जरूर लेकिन जितना मैं कर सकती उतना मैं करूंगी, ताकि आप भले जितना मदद करना चाहो तो भले करो। तो उसके बाद में दादी का एक अनुभव बहुत अच्छा रहा कि दादी सारा दिन ना मुरली पढ़ती थी, एक मुरली को तीन बारी पढ़ती थी, और वो मुरली पढ़ करके लिखती थी, पूरा दिन मुरली डायरी में लिखती थी। तो मैंने कहा दादी आपने तो पढ़ लिया फिर इतनी मुरली लिखोगे, कहा बाबा ने कहा है बाबा जब 40 पेज मुरली चलाते थे तो मैं 40 पेज मुरली को नोट करती थी, एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना शॉर्ट हैंड शुरू किया ताकि एक भी अक्षर मिस न हो। और बाबा ये कहता है कि मुरली जितना लिखेंगे उतना अच्छी से याद रहेगी, तो तुम लिखते हो मुरली। मैंने कहा मैं पूरी नहीं लिखती हूँ, मुरली का सार और धारणा लिखती हूँ। बोले आज के बाद तुम पूरी मुरली लिखना डायरी में, फिर मुझे सुनाना। तो दादी जी की विशेष मुरली तो बहुत ही अध्ययन, जब योग में बैठती थी खास अमृत वेला भी देखा मैंने उनके पास, जब सोती थी तो दादी जी उठ करके सोफे पर बैठती थी, तो मैं भी दादी के पास पांव के नीचे सोफे पर बैठ गई, दादी के नीचे पांव के नीचे, तो ऐसा लगा जैसे कि ब्रह्मा बाबा स्वयं वहां पर आए हैं और दादी जी को इतनी शक्ति इतनी पावर देते जा रहे हैं, जैसे कमरा बहुत पावरफुल हो गया। मैंने भी बहुत अनुभव किया बाबा का कि दादी जी को कैसे इतनी शक्ति है, अकेले घूमती अकेले रहती सब कुछ अकेले, और किसी से बात नहीं करती, इतनी गंभीर रहती है एकांत चित्त रहती है, तो कैसे अनुभव। तो देखा कि बाबा हर पल हर सेकंड में बाबा को बहुत बहुत नजदीक से उन्होंने देखा महसूस किया और अनुभव किया। और मैं भी आज यही अनुभव लाइफ में करती हूँ कि बाबा को अपने लाइफ में बहुत बहुत नजदीक से सेवा में यूज करती हूँ, हर सेकंड में बाबा को मैं याद करके, कि जैसे बाबा ने कहा है ना कि बच्चे जब चाहो तब कहो कि बाबा आप मेरे साथ हो, तो मैं भी अनुभव करती हूँ दादियों के साथ यही सीखा कि हर सेकंड में बाबा को इमर्ज करो और बाबा साथ हो जाते हैं।
थैंक यू। वैसे तो बातचीत जारी रखें तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है पूरा मतलब स्याही को समंदर बनाने जितनी बातें हैं। आखिरी एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हर दादियों को हमने देखा है कि उनकी विशेषताएं हैं, उनके अपने पसंदीदा गीत भी हैं। जानकी दादी के पसंदीदा गीत तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी दादियां कुछ सिंधी गीत भी गाते हैं जो हमने पब्लिक में नहीं सुने हैं। मैं हंसा दीदी से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में आप कुछ बताएं।
दादी, दादी जब छोटे थे तब बहुत हारमोनियम और गीत भी गाती थी, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो वो भी सारा उसका मर्ज हो गया। लेकिन एक गीत हमेशा उनको याद रहता था, वो गीत गाते उसको इतना जैसे नशा चढ़ता था। और अभी भी जब बीमार होती थी तो ये अंदर ही अंदर, जैसे हम कभी सुनते भी थे नींद में कि अंदर बैठो राम बाहर निकली, या अंदर ऐसे करती थी, अंदर बैठो राम बाहर निकली या, तो ये वाला जो गीत है हमेशा उसको नशा चढ़ाता था। वैसे तो सब चलते चलते वाला तो अभी अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन ये जो है अंदर बैठो राम, जो सिंधी है वो उन्हों को पता होगा। मनर भाई, अंदर बैठो राम बाहर निकलिया, डेट बी लौट मिठरा, अंदर की नैन खोल। हाँ, अंदर राम जो बैठा है ना, बाहर निकलो। ऐसे बहुत खुशी खुशी में दादी ये गाया करती थी। और दूसरा तो जैसे चलते चलते तो है, लेकिन क्लास में आती थी और रवि भाई एक गीत जो बजाता है उससे पता चलता था कि दादी आज मुरली क्लास करा रही है। सखीरे मैंने पायो तीन रतन, तो ऐसे ऐसे कई गीत है दादी के जो सबको पता है। दादी क्लास में आ गई है, दादी मुरली में आ गई है, तो इस रीति से अनेक गीत दादी को पसंद था।
चलिए, थैंक यू सो मच। जब बाबा ने ये कह दिया है कि ये कथा समाप्त नहीं हो सकती, तो फिर भी समय है आज योग का। मगर आज हमने दीदियों से सुना, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें बताई, और मैं समझता हूँ उनके पास पूरा सागर है। तो कभी मौका मिले तो दोबारा ज़रूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, रुक्मिणी दीदी का, लीला दीदी जी का, हंसा दीदी का और कविता दीदी का। तो दीदी सभी को एक हाथ की ताली से आप अभिवादन करें। थैंक यू। अभी हम योग में बैठते हैं, फिर से 2 मिनट योग से उठे, अभी योग से हम 1 मिनट योग करके उठेंगे दीदियों के साथ, और फिर इसके बाद एक अनाउंसमेंट है।
सदा हमारी सेवा में की मैं